लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। प्रभु के नूर हैं हम, आत्मा के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम, आत्मा के हूर हैं, हमें इस जहां को को पावन करना जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथ अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
ओम शांति। हम सब के बीच में निर्मलता और पवित्रता का एक पवित्र फरिश्ता ज्ञान सरोवर से उड़ता हुआ आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। दीदी हमारे मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1962 में आपने जब अपनी मेडिकल स्टडीज पूरी की, आपको यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करके आपने इसका अभ्यास भी आरंभ किया। तो न सिर्फ मेडिटेशन का अभ्यास शुरू किया, लेकिन साथ साथ चूंकि मेडिकल स्टडी भी पूरी की थी तो अपनी जॉब भी करते रहे। लेकिन फिर 1966 में बाबा की सलाह से आपने क्लिनिक भी खोला अपना और सेवा केंद्र भी। और दीदी की विशेषता रही कि सेवा केंद्र आपके लौकिक पिता ने आपको दहेज के रूप में दिया। शुरू से ही दीदी ने अपने हिस्से का जो धन है बाबा के कार्य में सफल किया है और आज दिन तक सभी आत्माओं को बाबा के यज्ञ में अपना धन सफल करके भविष्य 21 जन्मों को प्रारब्ध बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो फिर दोनों प्रैक्टिस चलती रही, लेकिन फिर 1971 में बाबा ने आपका सिलेक्शन किया विदेश सेवाओं के लिए। तो 1971 से लेकर 78 तक विदेश की अलग अलग धरनियों पर जाकर आपने बाबा की सेवाओं की शुरुआत की। शुरुआत में आप लंदन में गए, फिर यूके में भी पूरे घूमे, फिर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, फिजी, मॉरिशस आदि आदि कई स्थानों पर जाकर बाबा के सेवाओं की शुरुआत की। बच्चे निकाले, सेवा केंद्र खोले और फिर 1978 में ऑस्ट्रेलिया सिडनी को अपना बेस बनाया और 78 से लेकर 2008 तक करीब 30 वर्षों तक सिडनी में बेस्ड रहकर एशिया पैसिफिक रीजन में बाबा की सेवाओं का विस्तार किया कि जिस रीजन में आज की डेट में करीब 18 देश आते हैं जहां बाबा के सेवा केंद्र है, बाबा के बच्चे निकले हैं। तो वर्तमान में एशिया पैसिफिक रीजन के आप डायरेक्टर हैं और साथ साथ 2009 में तो बाबा ने आपको ज्ञान सरोवर में बुला लिया, तो आप वर्तमान में ज्ञान सरोवर के भी डायरेक्टर हैं। एक कंधे पर विदेश की जिम्मेवारियां और दूसरे कंधे पर देश की जिम्मेवारी। इतना ही नहीं, दादियां अव्यक्त होती चली गई, पूरे यज्ञ की जिम्मेवारियां भी आपके कंधों पर आई। वर्तमान में आप ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ब्रह्मा कुमारीज के। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है दीदी के कंधों पर जिम्मेवारियां भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली देखते हैं जितनी ज्यादा जिम्मेवारियां हैं दीदी के कंधों पर, उतनी ही ज्यादा जो बाबा ने लक्ष्य दिया है कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उपराम अवस्था उतनी ही ज्यादा है। और जितना ज्यादा बिजी उतना ज्यादा एसी, ये हम दीदी को प्रैक्टिकली देखते हैं। कोई मान शान नहीं, कुछ नहीं, आपसे पहले भी आकर बैठ जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेंगे। तो बहुत ही नम्रचित्त और बहुत ही मितभाषी है, बहुत कम शब्दों में अपना काम चला लेते हैं वार्तालाप के दौरान, और क्लासेस में भी बहुत कम शब्दों में बाबा की कुछ बातें अपने प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव के आधार से स्पष्ट करते हैं। तो ऐसे हमारे दीदी जी, उनसे आज हम सुनेंगे कि जो भट्टी का हमारा लक्ष्य है, महसूसता द्वारा संपूर्णता को प्राप्त करना, तो उसके लिए क्या विधि अपनाए। सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगी, क्योंकि आप लोग यहीं बैठे होंगे, 5:30 से बैठे, तो 6 बजे हमारा चंद्रयान 3 मून पर उतरा, और हम निकले तब तक, 6:15 बजे निकले तब तक मोदी जी का भाषण चलता था, और लाखों लोग टेलीविजन पर देख रहे थे। तो हमारे जो साइंटिस्ट ने ये पहली बारी साउथ पोल मून पर चंद्रयान उतरा है, तो सब बहुत प्राउड है। अच्छा, आप सभी का भाग्य है पांडव भवन में भट्टी करना, जहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे बने हुए हैं। साकार बाबा, प्रकाशमयी दादी और दीदी आदि सभी ने यहाँ तपस्या की है, और आपको शांति स्थान, बाबा का कमरा, झोपड़ी आदि आदि में जाने का चांस मिलेगा। और 25 तारीख आप लोग यहाँ होंगे, तो दादी जी का निमित्त प्रोग्राम भी चलेगा, और मैं समझती हूँ आपको राखी भी बांध देंगे मधुबन में। तो ये आपका भाग्य है। अभी ब्राह्मण जीवन में हमारा लक्ष्य क्या रहा? संपन्न बनना, बाप समान बनना। तो यहाँ आप भट्टी में रियलाइज करना, अंतर्मुख होकर, कि बाप समान बनने में मुझे अब क्या मेहनत करनी है, और उसके लिए अपनी भट्टी सफल करके जाना है। हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण बनना है। जाने के पहले बाप को प्रत्यक्ष करना है, अपने चेहरे और चलन से बाबा का साक्षात्कार कराना है। बाबा कहते हैं, मैंने तुम लोगों को अपना परिचय दिया, अभी तुम्हारी फर्ज है कि सारे विश्व को बाप का परिचय देना। तो एक एक को फरिश्ता ड्रेस धारण करनी है। तो आज आपको मैं सूक्ष्म फरिश्ते की ड्रेस सौगात में देती हूँ। स्थूल सौगात तो मिलेंगे ही, तो क्या करना, चलते फिरते अपने को फरिश्ता समझकर चलना। देही अभिमानी तो बन गए, पर अभी फरिश्ता बनना, फिर नेचुरली देवता बनेंगे। ये शरीर छोड़ेंगे फिर पुरुषार्थ के कोई मार्जिन नहीं रहेंगे। अभी मार्जिन है, उसमें भी ये चार दिन की भट्टी में बहुत पुरुषार्थ करना है, कोशिश करके साइलेंस रहना है, मन का मौन, मन को भी व्यर्थ संकल्प नहीं करने दो, वाणी का भी मौन, और तीसरा मोबाइल मौन। कौन कौन मोबाइल मौन कर सकते हैं? सब करेंगे। हाँ, फोन दे दे मैं सबको, सब दे दो अपनी टीचर को। आज का रात तक घर में बता दो कि हम आराम से पहुंच गए हैं, अभी चार दिन हमको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? तो यहां जब रहते हैं तो एक तो अपने आप को अंतर्मुखी होकर चेक करना है। बाबा कहते हैं अपना खुद ही टीचर बनना है, अपनी खुद ही चेकिंग करनी है। दूसरा, बाबा से जो संबंध का अनुभव नहीं किया है, क्योंकि बाबा को कहते हैं माता पिता बंधु सखा साजन बालक, तो बाप टीचर गुरु तीन तो मुख्य है ही, उसके अलावा जिस संबंध का अनुभव नहीं किया है वो यहाँ करके जाना, प्रयोग करना है, योग का प्रयोग करना है। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में एक माता थी, पांच बच्चों की माता थी, और हमको कंप्लेन करती है कि हमने अपनी लौकिक माँ का प्यार नहीं पाया। हम छोटे थे तो हमको घर में छोड़कर खुद धंधे पर चली जाती थी। मैंने कहा अभी तक तुम बाबा के बनी हो, बाबा को माँ बनाओ, उससे प्यार लो। तो उसने प्रयोग शुरू किया, जब खाती थी तो समझती थी बाबा मुझे गिट्टी खिला रहा है, जब सोने जाती थी तो समझती थी बाबा माँ बन के, क्योंकि वहां तो ठंडी बहुत होती है ना, विंटर में तो खास ठंडी बहुत होती है, तो माँ क्या करती है, बच्चे को ब्लैंकेट में लपेटती है और लोरी गाती है। तो समझती थी, एक्सपेरिमेंट करती थी कि बाबा मुझे माँ बन के ब्लैंकेट में लपेट रहा है। तो इसी रीत से उसने प्रयोग किया और हफ्ते के बाद मेरे पास आए कि दीदी अभी मैंने बाबा से माँ का प्यार पाया, अभी मैं अपनी लौकिक माँ को कह सकती हूँ कि मैं तुमको प्यार करती हूँ, नहीं तो मैं कह नहीं सकती थी दिल से कि माँ मैं तुझे प्यार करती हूँ। तो इसी रीत से बाबा का प्यार का अनुभव खास साजन के रूप में करना है। भाई लोग बाबा को साजन समझ सकते हैं? हाँ, कौन समझ सकते हैं, जरा हाथ उठाओ। प्रयोग करना। हमारे पास एक बंबई में माता थी, उसको बच्चा नहीं था। युगल ने काफी प्रयत्न किया बच्चा पैदा करने के लिए, पर बच्चा नहीं था। तो उसको थोड़ा दुख था। मैंने कहा बाबा को बच्चा बनाओ। तो उसने भी ये प्रयोग किया, जब भी शॉपिंग जाती थी अपने लिए तो सब्जी खरीदती थी, बाबा के बच्चे के लिए भी खरीदती थी। जब भी अपने लिए कपड़ा खरीदती थी तो सेंटर के लिए भी भूखा रुमाल आदि खरीदती थी। फिर उसको दुख नहीं रहा कि मेरे को बच्चा नहीं है। तो अभी महसूसता करके जो अनुभव नहीं हुआ है वो अनुभव करना और चेकिंग करना, मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बना हूँ। आजकल बाबा रोज कहते हैं देही अभिमानी बनो, मुझे निरंतर याद करो। तो आपको लिस्ट सुनाती हूँ। सर्वगुण संपन्न, पहला है एक्यूरेट, हिंदी में है यथार्थता। दूसरा है गुणग्राही, परोपकारी, निश्चिंत, हर्षित मुख, स्वच्छ, संतुष्ट, सहयोग, साहस, न्यारापन, दृढ़ता, अनुशासन, डिसिप्लिन, सरलता, निरअहंकारिता, स्फूर्ति, सुस्ती नहीं स्फूर्ति, दूरदर्शिता, निर्भयता, उदारता, शुभम, ईमानदारी, नम्रता, अंतर्मुखता, हल्कापन, गंभीरता, रहम दिल, आज्ञाकारी, नियमित, धैर्यतम, शालीनता, नम्रता, पोलाइटनेस, पवित्रता, श्रेष्ठता, रॉयल, आत्मविश्वास, सादगी, मधुरता, अथक और सहनशील। सोलह कला। पहला, सोचने और रचने की कला। दूसरा, खुश और संतुष्ट रहने की कला। तीसरा, सीखने और सिखाने की कला। चौथा, स्वस्थ रहने की कला। मामा ने जगदीश भाई को कहा था, बीमार रहते थे ना, अंत में लीवर की प्रॉब्लम थी, तो बाबा ने कहा कि ज्ञान का तो नॉलेज फुल रहते हो, परंतु शरीर का भी नॉलेज फुल रहो, शरीर की भी संभाल करो। पांचवा, सुधार और विकास करने की कला। छठा, काम और आराम करने की कला। काम भी करो, आराम भी करो, ऐसे नहीं आराम रात को ना करो या दिन में ना करो, और योग में और क्लास में जुट के खाओ, ये ना हो। तो काम भी करो। बोलने की कला, पत्र लिखने की कला। जब मैं ज्ञान में आई ना, तो बाबा ने कहा मिनिस्टर को पत्र लिखकर बताओ। लिखने की कला कैसी है वो बाबा देखना चाहता था। श्रेष्ठ व्यवहार करने की कला। दसवा, मित्र अथवा अपना बनाने की कला। दादी जानकी के पास ये कला बहुत अच्छी थी। VIP को मिलती थी ना, कहती थी तू मेरी बहन हो, यदि कोई भाई होता था तो मेरे भाई हो, तो फील करता था कि ये हमारी है। और प्रकाशमणि दादी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में आई थी, पब्लिक टॉक था। पब्लिक टॉक के बाद एक भाई ने मुझे कहा कि हमको तो इस दादी से अपनेपन की भावना आती है। तो जैसे आज भी हम क्या कहते हैं, मेरा बाबा, हमारा बाबा, हमारी मम्मा, देखा नहीं होगा पर हमारी है, ये भावना आती है। पालना करने की कला, हास्य व विनोद की कला। एक तरफ गंभीर भी रहना है तो रमणीक भी रहना है, सिर्फ गंभीर नहीं। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, दादी प्रकाशमणि जब नई नई बंबई में आई तो इतनी सर्विस नहीं थी, तो बाबा ने मरी हुई मक्खी एनवलप में डाल के बंबई भेजी कि तुम मक्खियां मारते हो। रमणीक, हम कभी भी देश 1 अप्रैल को जाते थे तो एक बार लच्छू बहन यहीं से जा रहे थे उस दिनों में, तो हम टैक्सी में बैठे थे, लच्छू दादी दौड़ती दौड़ती आई कि बाबा ने आपके लिए गरम गरम पकौड़ा भेजा। और पकौड़ा खोला तो अंदर मूंगफली के छिलके, बेकार को अच्छा बनाने की कला, 14 व्यवस्था एवं प्रशासन की कला एडमिनिस्ट्रेशन, 15 नेतृत्व कला, 16 गुप्त रखने और प्रत्यक्ष करने की कला, क्योंकि कई बातें ऐसी है जो हमें गुप्त रखनी है, कोई भी पूछे, नियरेस्ट डियरेस्ट कोई भी पूछे बतानी नहीं है, और कोई बात है वो बताने से औरों का उमंग उल्लास होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अनुभव सुनाते हैं, जिन्होंने अच्छा अनुभव किया है उसको सुनाते हैं, ताकि सबको प्रेरणा मिले। तो ये भी कला है, औरों को उमंग उल्लास में लाने की। अभी निर्विकारी, निर्विकारी बनना है ना, तो बड़े बड़े विकार तो हमको मालूम है, देहाभिमान सब विकारों की जड़ है, फिर ईगो अभिमान, काम क्रोध लोभ मोह द्वेष वैर ईर्ष्या आदि आदि। अभी उसका सूक्ष्म रूप क्या है, जो देह अभिमान वाला है ना, उसको अपने पर तरस पड़ता है कि मैं काली हूं तो कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो गोरी है तो उसको सब रिस्पेक्ट देते हैं, या मैं कुछ ओपिनियन देती हूँ कोई सुनता नहीं, फलानी देती है तो सब सुनते हैं, नर्वस बाह्य मुखी, और जो देह अभिमानी है ना, वो नाच नखरे करते हैं कि दूसरे को आकर्षित करें, या मेकअप करते हैं, हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, और अपना टाइम मनी एनर्जी खर्च करते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, जरूरत नहीं है पर किसी का अच्छा कपड़ा देखा तो कहते चलो पूछें कहाँ से खरीदा, कितने में खरीदा, फिर प्लान बनाना तो कितना समय पहले तो खर्च करते हैं, फिर पैसा बचत करना पड़ता है। तो मन शान की चाहना रखते हैं, और कई है जो वजन ना बढ़े ना, उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं, डाइटिशियन के पास जाएंगे कि क्या क्या हमको खाना है क्या नहीं खाना है, फिर माप करते हैं रोज, वजन करते हैं काफी, तो वो हमारे पास एक डांसर थी, बैले डांसर। उसका टीचर कहे जरा भी वजन नहीं बढ़ना चाहिए, और यंग थी, भूख तो लगती है। फिर क्या करती थी, खाना खाती थी और अंगुली डालकर वॉमिट कर देती थी। क्या करें, लज्जा आती, चिंता करते हैं। समाज जो करते हैं वही करना है, नया कुछ करेंगे तो लोक लाज का डर होता था। सफेद साड़ी पहन के जाएंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे। इसलिए कई लोग सफेद साड़ी नहीं पहनते हैं अभी भी। हमारे सिंगापुर में साउथ इंडियन माताएं हैं, कलर्ड कपड़ा ही पहनना पड़ता है। मजाक उड़ाना, औरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करना, झरमुई झरमुई, और जो देही अभिमानी है वो स्वमान में रहते हैं। जो है जैसे है, बाबा ने मुझे स्वीकार किया है तो अपने को जैसे हैं स्वीकार करते हैं। कॉन्फिडेंस रहता है, आत्मविश्वास, अंतर्मुखी, उदार दिल, इकोनॉमिक, सिंपल, उनको कॉन्फिडेंस रहता है, कोई चिंता नहीं। औरों का ओपिनियन की परवाह नहीं करते, हर्षित, संतुष्ट, गर्मी होती हो तो एक खुद खिड़की खोल सकते हैं, वहां की खिड़की आधी खोल दो, बस ठीक है। काम विकार का सूक्ष्म रूप क्या है, प्रभावित होना, आकर्षित होना, फैमिलियरिटी, कोई विशेष व्यक्ति की कंपनी चाहते हैं, उनसे बोलें, उनसे मिलें, जुले, बातचीत करें, नष्ट मोह कहते हैं बाबा। जो मोह जिसको होता है वो औरों के ऊपर डिपेंड होता है, आधार मेरा, मेरा बच्चा है, मुझे वही जो कहूँ ऐसे करना है। तो बच्चे को क्या पढ़ाई करनी है, क्या पहनना है, क्या खाना है, पीना है, सबका कंट्रोल करते हैं। और जिसमें मोह है उसकी फेवर करते हैं। हुँ? दूसरे बच्चों के लिए पीछे खाना देंगे उसके लिए पहले निकाल देंगे। और एक मुंह वाली माता एयरपोर्ट पर मुझे मिली, कहती है मेरा बच्चा अमेरिका जाता है, वैसे तो खुशी खुशी से पढ़ने कमाने भेजते हैं, वो जलेबी उसको बहुत अच्छी लगती है, वहाँ कौन खिलाएगा। अच्छा 20-25 साल पहले तो अमेरिका में ये सब कुछ मिलता नहीं था, अभी तो पैकेट मिलते हैं, तो मैं भी नहीं जलेबी खाऊंगी। तो जिसको मुंह होता है वो अपनी ऑथोरिटी भी रखता है कि मेरा पत्नी है, मुझे टाइम पर गरम गरम खिलाना है। क्या है, हम न्यूजीलैंड में हमारी इंडियन माताएं भाई बहुत है, वो मैं आज से 25-30 साल पहले की बात करती हूँ, तो माताएं सब कुछ काम करती थी, नौकरी भी करती थी, पेंटिंग भी करना है, बल्ब भी चेंज करना है, सब करती थी, और टाइम पर पति को खाना देना है, गरम गरम रोटी थाली में देनी है, भाई कुछ काम नहीं करेंगे। आजकल तो माताएं होशियार है, पति को कहेंगी तुम ये काम करो, बच्चों को कहेंगे ये काम करो, बर्तन पोछो। तो क्या है कि कोई कोई माता होशियार होती है। लंदन में हमारे पास एक माता थी, दो बच्चे थे, पति पत्नी दोनों ज्ञान में थे। तो माता कहे एक दिन तुम क्लास में जाओ मुरली के लिए, एक दिन मैं जाऊंगी। और फिर वो प्रेम में छोटे बच्चे को साथ में ले जाते थे और पति को कहते थे तुम उसको तैयार करके स्कूल में छोड़ के आना। पीछे ड्राइविंग सीख गई तो ड्राइविंग करके सेंटर पर पौना घंटा ड्राइविंग करके आती थी। अभी भी गीता पाठशाला चलाती है। लोभ, लोभी के हमेशा कुछ न कुछ इच्छा रहती है। अच्छा खाना बना तो रोज से डबल खाएंगे, खाना अच्छा नहीं, अपने को अच्छा नहीं लगते है डिश तो कहेंगे आज भूख नहीं है। कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, कंजूस होते हैं, दान देने में हिचकते हैं। उनके कबट फुल होंगे, नया कुछ देखेंगे खरीद लिया, जरूरत है या नहीं खरीद लिया। स्वार्थी, गुस्सा। तो यदि संतुष्टता का गुण धारण करेंगे तो लोभ नहीं रहेगा। प्यारा रहना है, पन्यारा रहना है, अटैचमेंट ना हो, मोह ना हो। क्रोध, चिड़चिड़ापन, सहन शक्ति की कमी है तभी तो क्रोध आता है, या धीरज नहीं है, अपने को सुधारने के लिए कहते हैं हमारी पुरानी हैबिट है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, और दूसरों को कहेंगे भाई चार बार ही कहा अभी तक क्यों नहीं किया, जरा भी अक्ल नहीं है ना, अपमान करेंगे। फोर्सफुल, हमारे पास एक पति आया, मैं डिस्पेंसरी में थी तो वहां आमने सामने वाले ज्ञान में आते थे, तो भाई आकर टेबल पर हाथ पछाड़ कर कहता है मेरी पत्नी को आप सेंटर पर नहीं आने दो। मैंने कहा कि भाई हमारा तो मंदिर है, मंदिर में पुजारी कहेगा किसी को कहता आप नहीं आओ, किसी को ना नहीं कहेगा, तुमको यदि तुम्हारी पत्नी को नहीं आने देना है तो तुम कंट्रोल करो, मुझे क्यों कहते हो, किस शास्त्र में लिखा है ब्रह्मचर्य का पालन करना, बहुत संस्कृत पढ़ा था, संस्कृत में बात कर सकता था, तो थोड़ा साल तो पत्नी को तंग किया, कभी माँ के घर भेज देता था, घर से निकाल दिया तो बहन जाएंगे कहाँ, माँ के घर। एक दिन रात को 10 बजे घर से निकाल दिया, तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं करती हो कि मेरे काम की नहीं हो जाओ। अभी रात को रात्रि का ड्रेस पहना है, हाथ में पैसा नहीं कुछ नहीं, कैसे जाएंगे कहाँ जाएंगे, तो माता सारी रात छत पर बैठी रही क्योंकि आवाज करे तो भी अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे देखो ये ब्रह्मा कुमारी में जाती है झगड़ा करती है, इसलिए और कहाँ भी जा नहीं सकते थे। फिर सवेरे दूध वाला आता है, उन दिनों में घर में दूध लेकर आता था, वो आया तो उसको भाई को घर खोलना पड़ा, ममता घर में घुस गई, क्रोधी को डर रहता है, आर्ग्यूमेंट करता है, तो क्रोध क्यों आता है कि उसकी जो अपेक्षा है पूरी नहीं होती है, केयरलेस, ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं अपने को, और बहानेबाजी, कहते मैंने समझा फलाना करेगा तो अपनी जिम्मेवारी निभाते नहीं, और खर्चा खूब करता है, अपना बोलना सोचना करना टाइम व्यर्थ कर गंवाते हैं। तो इस समय हमें रियलाइज करना है कि हमारा टाइम मनी एनर्जी बहुत वैल्यूएबल है, अलस्य आलसी थक जाता है, बहाना बताएंगा ये तबीयत ठीक नहीं, सिर दर्द है, कौन मापने जाएगा, बुखार कहेगा तो कोई माप करेगा। तो आलसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, उसको आराम से बैठना अच्छा लगता। तो जितना हमारे अंदर उमंग उल्लास होगा, आलस्य नहीं रहेगा। जलसी ईर्ष्या, सम्मान की कमी है तो दूसरे हमारे से अच्छा है तो उसकी ईर्ष्या होती है, तो कंपेयर करते हैं, कंपटीशन करते हैं, अपने को असुरक्षित समझते हैं। तो सम्मान बढ़ाना है और वैर भाव, वैर भाव होता है या तो लड़ना झगड़ना करते हैं, शब्दों से झगड़ते हैं और बदला लेने की आशा करते हैं, और कई बार कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। मोटर का किसका एक्सीडेंट हुआ रास्ते में और वो आदमी मर गया तो ड्राइवर को पीट कर खलास कर देंगे, और ऐसे नहीं कि कानून में जाके पुलिस को कंप्लेन करें और पुलिस कायदे अनुसार उसको सजा देने को ले लेते हैं। तो ये सब विकारों को जानना है, अंतर्मुखी होकर देखना है और विदाई देनी है। ओम शांति।
बहुत सुंदर, भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य आपको पता चला कि एकांत के समय में बैठकर अपने भीतर की जांच कैसे करनी है अंतर्मुखी होकर। दीदी का पुनः पुनः धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।